श्री हरि ही प्रथम संस्करण की पूर्व पीठिका साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन भर्तृहरि। आज लगभग 2000 वर्ष हुए तब महात्मा भर्तृहरि के मुंह से ये शब्द निकले और दिग्दिगंतों को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश सागर में विलीन हो गए। तब से अनेक बार इनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ, हजारों लाखों बार बिजली की तरंगों के समान उदय होकर इन्होंने अपनी भाव छटा दिखाई और अब भी समय समय पर भावुक जनों के निर्मल हत पटलों में अपने चमकीले भाव चित्र को अंकित करके समाहित हो जाया करते हैं। आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है और उस पर हमें विवेचना दृष्टि से कुछ विचार भी करना है। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भर्तृहरि ने ये शब्द क्यों कहे, जिन्होंने अपनी वैराग्य संपत्ति के कारण चक्रवर्ती राज्य पर लात मारकर गिरी गुहा का रास्ता लिया, जिनके श्रृंगार शतक में भी पद पद पर वैराग्य की छटा छिटक रही है, उन्हीं राग द्वेष विहीन तपस्वी प्रशांत हृदय मनस्वी महात्मा भर्तृहरि के मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। साहित्य और संगीत कला से रहित बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को, माननीय महापुरुषों को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द शिव शिव पशु कहकर क्यों याद किया। यह बात भी समझ में नहीं आती कि काव्य साहित्य में अधिक प्रेम होने के कारण उन्होंने अन्य विषय में अभिज्ञों को दुराया है और साहित्य की मर्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा कह डाला है। पहले तो एक विरक्त तपस्वी का किसी एक विषय से अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैसा, और फिर यदि यह ठीक भी है तो दूसरे लोगों के लिए ऐसे अभद्र शब्द कह डालना भद्र जनोचित कार्य नहीं है। फिर एक साहित्य मर्मज्ञ के मुंह से फुहड़पन की बात निकलना तो और भी आश्चर्यजनक है। यह ठीक है कि भर्तृहरि शतक की लोकोत्तर कविता की धाक संस्कृत साहित्य पर अक्षुण्य है। यह भी ठीक है कि भर्तृहरि ने साहित्य के कई ग्रंथ बनाए थे, जिनका प्रमाण तदुक्तम भर्तृहरिणा कहकर साहित्य दर्पणाकार तथा अन्य आचार्यों ने दिया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं था या साहित्य की अपेक्षा शास्त्रांतरों का ज्ञान कम था, अथवा यह कि दूसरे शास्त्रों में धुरंधर लेखक और प्रमाणिक आचार्य भर्तृहरि की प्रतिष्ठा साहित्य की अपेक्षा बहुत कम करते थे। पाणिनीय व्याकरण में कयट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतंत्र प्रज्ञ लक्ष्य चक्षुष्क तीन महर्षियों पाणिनि कात्यायन पतंजलि को छोड़कर अर्वाचीन आचार्यों में इनका आसन सबसे ऊंचा है। इन्होंने इस व्याकरण का जो उपकार और उद्धार किया वह किसी से न बन पड़ा। लोगों का तो यहाँ तक ख्याल है और ठीक है कि यदि कैट ने प्रदीप न बनाया होता तो आज पातंजल महाभाष्य का समझना असंभव होता। इसी प्रदीप के आरंभ में अपनी शील संपन्नता और निर्भिमानता सूचन करने के लिए महामना कैट ने एक पद्य लिखा, भाष्याब्धि क्वाति गंभीर क्वाहम मंद मतिस्ततः छात्राणाम उपहास्यत्वम जस्यामि पिसुनात्मनाम। इसके आगे जो आपने अपनी आशा का सहारा दिखाया है वह विशेष ध्यान से पढ़ने योग्य। आप लिखते हैं तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना क्रममाणः सनेह पारम तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत। कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे वचन हैं, कितने निर्मल हृदय का पवित्र भाव है। आप कहते हैं कि यद्यपि महाभाष्य जैसे अति गंभीर सागर का पार करना मेरे जैसे मंदमती को अशक्य और उपहास्य है, तथापि भर्तृहरि के बनाए सार नामक ग्रंथ रूप सेतु के सहारे मैं धीरे धीरे पंगु की तरह उसका पार कर सकूंगा। जैसे हरि श्री रामचंद्र के बनाए सेतु बंध के द्वारा आज पंगुल जिसके दोनों पैर निकम्मे हों वो भी धीरे धीरे समुद्र पार कर जाता है, उसी प्रकार मैं भी भर्तृहरि के बनाए सार सेतु के सहारे भाष्यकार का पार पा सकूंगा। ये है भर्तृहरि के संबंध में व्याकरण के पारंगत एक धुरंधर आचार्य के भक्ति भरे वचन। क्या अब कुछ और भी सुनने की इच्छा है? उक्त सार नामक ग्रंथ हरिकारिका और भर्तृहरिकारिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या वैयाकरण थे? कदापि नहीं। प्रथम तो कोरा वैयाकरण महाभाष्य जैसे सर्व पथिन आकर ग्रंथ पर टीका लिखा, यही असंभव है। फिर यदि कोई अनात्म ऐसा कह कर भी बैठे तो उस पर साधारण लोगों की भी श्रद्धा होना कठिन होगा। कायट जैसे महापुरुषों को तो बात ही क्या इसके अतिरिक्त आपके बनाए कई साहित्य ग्रंथों का भी पता चलता है। बृहदारण्यक उपनिषद पर भर्तृप्रपंचक नामक आपका एक उद्भट वेदांत ग्रंथ भी मिलता है, विद्यमान है। भर्तृहरि शतक तो अत्यंत प्रसिद्ध है। आपका वाक्य पदीय नामक व्याकरण ग्रंथ प्रकृत सार में भिन्न है। इससे निसंदेह सिद्ध होता है कि भर्तृहरि अनेक शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। क्या साहित्य, क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदांत, इन्हें सब कराकमलवत भाषित थे। वस्तुतः हमारी सम्मति में तो भर्तृहरि जी जोगीराज थे। उनकी अप्रतिहत प्रज्ञा लौकिक और अलौकिक सभी विषयों में निर्बाध प्रसार पाती थी। कोई बात उनसे छिपी नहीं थी। उन्हीं जैसे महानुभावों के संबंध में यह कहा जाता है, श्लोक अविर्भूत प्रकाशानां अनुप्लुत चेतसां अतीतयानागत ज्ञानं प्रत्यक्षान अतिरिच्यते अतिन्द्रियान संवेदान पश्यन्त्या अर्षेण चक्षुषा ये भवान वचनं तेषां नानुमानेन बध्यते। अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब बातें ठीक है तो फिर ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष ने ऐसी अनुचित बात क्यों कही? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। क्या सचमुच वैयाकरण और न्यायिक मीमांसक और ऐतिहासिक नीरे पशु भी ही होते हैं? और फिर पशु भी कैसे, साक्षात पशु? तीस पर तुर्रा यह की पुच्छ विषाणहीन, वे सिंह पुच्छ से पशु, आखिर बात क्या है? क्या इसमें कुछ रहस्य है? यदि नहीं तो एक प्रशांत तपस्वी के मुख से यह कठोर उद्गार क्यों निकले? कैलाश पर्वत के बर्फीले शिखर से ज्वालामुखी की विकराल ज्वाला का यह कड़ुआ धुंधा क्यों प्रकट हुआ? न तो यही जी चाहता है कि एक साधारण आदमी की बौखलाहट की बड़बड़ाहट से निकले अंड बंड शब्दों के समान महात्मा भर्तृहरि के इन वचनों की भी उपेक्षा कर दी जाए। और न यही साहस होता है कि अन्य शास्त्रों के विद्वानों के संबंध में ऐसी नासिक राय कायम की जाए। समस्या कुछ जटिल अवश्य है, इनकी विवेचना होनी चाहिए। हमारी संपत्ति में उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि पशु किसे कहते हैं और साहित्य क्या है। इन दोनों की ठीक ठीक मीमांसा को जानने से बात कुछ सरल अवश्य ही हो जाएगी, एवं अनौचित फुहड़पन और कठोरता का भयानक भूत भी कागज का शेर हो जाएगा। पशु शब्द रूढ़ शब्दों से है। इसका प्रवृत्ति निमित्त एक जाति विशेष है और व्युत्पत्ति निमित्त है। अविशेष शब्द दर्शित्व सर्वम अविशेषेण पश्यतीति पशु दृश्य कुह, जो सबको अविशेष रूप से देखे, जिसे वस्तुओं में विशेषता का ज्ञान न हो, अर्थात अधिकांश जिसका ज्ञान सामान्य रूप ही हुआ करे, वही पशु कहता है। बैल को स्त्री और पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है, यह एक समझता है कि यह गौ है, यह बैल है, परंतु गौओं में उसे मनुष्य की भांति गम्य आगम्य की ज्ञान नहीं है। माता और बहन की विशेषता का बोध उसे नहीं है। गौ यह जानती है कि घास मेरा भक्ष है, जहाँ कह वहीं उसे पाएगी, खा जाएगी। यदि उसे वे नन्हे से बच्चे के लिए दो एक मुट्ठी कोमल घास किसी ने रखी है, तो वह उसे भी न छोड़ेगी। वह कभी न सोचेगी कि इसे बच्चे के विनोद के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पशुओं की अविशेष दर्शिता अविशेष दर्शिता के हजारों उदाहरण दिन रात सामने आया करते हैं। नवीन न्यायिकों के मतानुसार पशुत्व जाति नहीं बल्कि धर्म है। वे लोग लोकमत लांगुल बालोदार पुच्छ को ही पशुत्व मानते हैं। सिर्फ लांगुल कहने से नाके और गोह प्रभुति की पशु में घुस पड़ते, इसलिए लोमवत विशेषण दिया गया है। दुम पर बाल भी होने चाहिए। जलचर जीवों की दुम सपाट होती है, उस पर बाल नहीं होते। हम इस अपकृत बात पर यहाँ व्यर्थ विस्तृत शास्त्रार्थ खड़ा करना नहीं चाहते, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि शौकीनों ने अपने कुत्तों में की दुम जब जड़ से उड़ा दी जाए, या जिन शिकारियों हाथियों की पूछ शेर उड़ा ले गया है, अथवा जिन घोड़े गौ आदि की पूछ किसी कारण गिर गई है, उन्हें या तो पशुत्व से ही बाहर करना पड़ेगा, या फिर न्यायिकों को अपनी लोमवत लांगुल से ही कुछ भी निवेश करना पड़ेगा। बिना लोमवत लांगुल के उनमें पशुत्व की प्रतीति कौन कराएगा? इसके सिवा दरियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गौ आदि जिन जीवों की सकल सूरत पशुओं से मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कि वे स्थल में भी पशुओं के समान ही श्वास प्रश्वास ले सके, और एक दो दिन नहीं, महीने दो महीने नहीं, वर्षों केवल स्थल में रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर सके, जिनका भोजन और रुधिर बहुत अंशों में पशुओं से मिलता जुलता है, उन सबको न्यायिकों की इस बालोदार पूछ के भरोसे पशुत्व कोटि से निकाल बाहर करना साहस मात्र है। केवल जलचर कह देने से यहाँ काम नहीं चल सकता। बहुत से प्राणी शास्त्रवेता तो भैंस को भी जल जंतु मानते हैं। बहुत दिनों से केवल स्थल में रहने के कारण उनकी दुम पर दो चार बाल जम आए हैं। देह अब भी दरियाई घोड़े के समान सपाचट रहा करती है। और भी बहुत सी बातें इसकी जल जंतुओं से मिलती है। रहा दूध देना, सो वेल मछली भी मानो दूध देती है। दूध देने से कोई पशु नहीं हो सकता। फिर लक्षण तो केवल लोमवत ही है। दूध दही से आपको क्या मतलब? यदि इसे उपलक्षण माने, तब तो गड़ुआ गढ़त है गई भेर। कोई लोग लोमघ लांगुल को उपलक्षण मानते हैं, पर हमारी सम्मति से इसे विशेषण मानना ही अधिक युक्तिसंगत है। इस अनावश्यक झगड़े को हम यहीं छोड़ते हैं। यद्यपि रूढ़ी शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त साथ ही साथ रहा करते हैं, एक के बिना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु यह नियम केवल अविधा शक्ति के लिए है। लक्षण से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति में कोई बाधक नहीं होता। प्रकृत पद्य में पशु शब्द लक्षण से ही आया है। मुख्य और लक्ष्य अर्थों में अव्यचकत्व रूप संबंध है। अज्ञान अतिशय बोधन करना लक्षण का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रकृत पद्य से पशु शब्द का अर्थ है अविशेष दर्शी, अर्थात किसी बात या वस्तु की विशेषता बारीकी को न समझने वाला स्थूल दर्शी। और साहित्य क्या है? साहित्य वह शास्त्र है जिसमें भावना और भावुकता की पद पर आवश्यकता है, जिसमें प्रकृति देवी के प्रसन्न गंभीर कौशलों को परखने की प्रतिभा नहीं है, जिसकी भावना की अप्रति हतधारा न केवल मनुष्यों के बल्कि पशु पक्षियों तक के हृदय तल में विलीन गहरे से गहरे भावों को स्पष्ट सामने नहीं देख रही देती, उसे साहित्य शास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जिसे दूसरों का भाव समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, है जो प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा का तात्पर्य समझ सकता है, हाथ पैर और आंख नाक का ही नहीं अपितु किसी की अस्वाभाविक रीति से ली हुई सांस का भी भाव जिसकी समझ में साफ आता है, वही इस शास्त्र का उपयुक्त पात्र है। इसके सिवा एक बात की आवश्यकता है और बहुत बड़ी आवश्यकता है, या वह क्या? वही भावुकता, किसी की दुख भरी हाय को सुनकर जिसके दिल में दर्द नहीं पैदा होता, जिसका हृदय जंगल पर्वत और पवित्र मंदाकिनी की धारा को देखकर एकदम शांति निमग्न नहीं होता, न समझ बच्चों की तोतली बाणी और भोली भाली चेष्टाओं को देख तन्मय होकर जो बच्चा नहीं बन जाया करता, जिसका हृदय स्वच्छ जल में खिले कमलों पर बिहार करते राजहंसों की लीला और वसंतिक कोकिल की काकली को सुनकर मस्त नहीं हो जाता, एवं वियोग श्रृंगार की दर्द भरी चुभती हुई कथाएं सुनकर जिसका हृदय मुर्गे विस्मिल नहीं की तरह तड़फने नहीं लगता, उसे इस शास्त्र का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। मतलब यह कि जिसका हृदय निर्मल दर्पण के समान स्वच्छ और मक्खन के समान कोमल है, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकल रूप से प्रतिबिंबित होता है और जो तुरंत तन्मय हो जाता है, वही साहित्य शास्त्र का उत्तम अधिकारी कहा जाता है। साहित्य के स्वरूप पर अर्वाचीन साहित्य विवेचना में हमने विस्तृत विचार किया है। केवल रटने के बल पर सरस्वती के घर में टांग अड़ाने वाले लोगों की दाल यहाँ नहीं गलती। रट्टु आदमी साहित्य का पंडित कहलाए यह असंभव है। क्यों? उत्तर स्पष्ट है। साहित्य का तात्पर्य समझने के लिए वक्ता के शब्दों का और उनके अर्थों का जान लेना काफी नहीं है, यहाँ तो बोलने वालों के हृदय में घुसना पड़ता है। वक्ता के शब्दों का नहीं बल्कि उसके हृदय का तात्पर्य निकालना पड़ता है। दूसरे शास्त्रों में अविधा वृत्ति का बड़ा आदर है। साफ साफ कही हुई बात सबसे उत्तम, सबसे मजबूत, सबसे प्रामाणिक समझी जाती है, परंतु यहाँ उस वृत्ति की बुरी तरह छिछाले दर की गई है। असली बात को, प्रधान तात्पर्य को अविधा से कहना दोष है, गमार्पण है। श्रृंगार रस में यदि श्रृंगार का नाम ले लिया कि बस लोगों के नजरों में से गिर गए, फिर तात्पर्य का भी कुछ ठिकाना है? शब्द तो कहते हैं कि भ्रम धार्मिक भगत जी आप मजे से घूमिए, पर इसका असली तात्पर्य है कि बच्चू खबरदार इधर आए कि मारे गए। शब्द कहता है कि न गता तू नहीं गई, पर तात्पर्य है कि अवश्यम गता अवश्य गई। शब्द कहता है कि उपकृतम बहु आपने बड़ा उपकार किया, लेकिन तात्पर्य है कि तुम से बढ़कर नीच कोई नहीं। अब भला बताइए कि सिर्फ शब्दों का सीधा सीधा मतलब समझने वाला ऋजु बुद्धि पुरुष यहाँ क्या झक मारेगा? उस बेचारे के पल्ले तात्पर्य क्या पड़ेगा? यहाँ शब्दों के सीधे अर्थों पर आस्था की ही नहीं अविदा शक्ति की कुछ इज्जत ही नहीं, सीधे शब्दों का उल्टा और उल्टे शब्दों का सीधा मतलब निकाला जाता है और निकाला जाता है बोलने वाले के हृदय में गहरी से गहरी तह को परख कर। यह नहीं कि जहाँ जो जी चाहे जहाँ जो जी में आया वह कह बैठे, कहीं सुनी बात के लिए उत्पत्ति चाहिए, युक्ति चाहिए और चाहिए कहने में तासीर जो सुनने वालों के दिलों में घर कर जाए। देखना तकरीर की लजत कि जो उसने कहा, मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है, इसलिए अलंकार शास्त्र के प्रधानतम आचार्य श्रीयुक्त आनंद देव वर्धनाचार्य ध्वनिकार ने कहा है, शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते, वेद्यते सहि काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम्। अब बताइए कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की परख और प्राणियों के हृदय गत भावों को जानने की अप्रतिहत प्रतिभा नहीं, वह इस शास्त्र में घुसकर भी क्या पाएगा? केवल रट्टू आदमी यहाँ से क्या निकालेगा? इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं और अच्छे प्रकार प्रमेयों का विशुद्ध परिचय नहीं, उसकी यहाँ भी गुजर नहीं। कवि लोगों की प्रतिभा सर्वपथिन होती है, जिधर नजर उठी उसी को बांध दिया। उसके समझने और समझाने के लिए उन सब बातों को जानने की आवश्यकता है। किसी की दृष्टि न्याय पर पड़ी तो उसने साध्य निश्चित मन वयेन घटितम बिभ्रत्स सपक्ष स्थितिम व्यावृतम च विपक्षो भवति यत् तत्साध्यम सिद्ध्यते मुद्रा राक्षस इत्यादि लिख मारा। किसी ने योग की तरफ देखा तो आत्माराम बिहिरत्यतो श्लोक आत्मारामा बिहितरतयो निर्विकल्पे समाध्यौ सत्तोद्रिकाद्विध घटित मुग्र ग्रंथ सत्वनिष्ठा यम विच्छन्ते कमपि तमसाम ज्योतिषाम वा परस्तात। वेणी संहार कह दिया, कहीं सांख्य और वेदांत की याद आई तो त्वमामन्नमन्ति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तिनिम स्वदर्शिन मुदासीनम स्वामेव पुरुषम विदुः। बन गया वेदांत की बाहर के श्लोक देखने हो तो नैषद के अनेक स्थल देख जाइए, देखिए कितनी चोज भरी बात है। श्लोक नास्य दीजेन्द्रस्य बभूव पश्य दारान गुरुर्यात् तवतो अपि पातः प्रवृत्तयोप्यात्मन मय प्रकाशान नहयन्ति नहयन्ति मह देहमात्मान। नैषध 22 सर्ग। कहने को तो श्री हर्ष ने यह न्याय और वैशेषिक की हंसी उड़ाई है कि मुक्तये यह शिलात्वाय शास्त्रमुचे सचेत्तसाम गौतमं तम अवेक्षैव यथा वित्थ तथैव सः ध्यान तवस्य वामोरु विचारयाणाम वैशेषिकम चारुमतम मतम में औलुकमाहु खलु दर्शनम तत्तक्षमम तमस्तत्व निरूपणाय। परंतु जिसे न्यायिकों के मुक्ति का स्वरूप और उस पर किए गए वेदांतियों के मार्मिक आक्षेपों का पता नहीं, वह इस उपहास को समझाते समय क्या स्वयं ही उपसहनीय नहीं बन जाएगा? जिसने वैशेषिकों की जन्म कहानी नहीं जानी है और जिसने यह नहीं समझा है कि वैशेषिकों की प्रायः सभी ग्रंथों में अंधकार पर विचार किया गया है, वह इस उपहास को क्या समझेगा? फिर उलूक गौतम और दर्शन को तो देखिए, क्या इसके लिए कुछ कम मर्मज्ञता की आवश्यकता है? निदान साहित्य के समझने के लिए हर एक शास्त्र के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है। साहित्य क्या शिक्षा देता है? अब लगे हाथों इस ओर भी दृष्टि डाल जाइए कि साहित्य सिखाता क्या है। सबसे पहले साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों को सुसंपन्न बनाना है। साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए पीछे जिन अधिकारों की चर्चा आई है उन्हें यथावत संपादित करना साहित्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। संक्षेप में यो समझिए कि भावना को निर्मल करना ही भावुकता को परिष्कृत करना साहित्य शिक्षा का प्रथम सोपान है। जिन लोगों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिए हैं उन्हें निर्मल और स्वच्छ बनाना साहित्य का काम है। जिस प्रकार खान से निकाला हीरा जब तक शान पर न चढ़ाया जाए तब तक उसमें राज मुकुट पर चढ़ाने की योग्यता नहीं आती और न उसकी असलियत ही खुलती है। इसी प्रकार साहित्य की रगड़ के बिना भावना और भावुकता की परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता। और बात यह है कि प्रतिभा संपन्न पुरुष साहित्य ज्ञान के बिना भी कविता आदि करे और कोई अच्छी कल्पना भी कर ले परंतु उसका परिमार्जन परिष्कार और विवेचन शक्ति इसके बिना नहीं आ सकती। इनकी प्रतिभा के जौहर इसके बिना नहीं खुल सकते। वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किए भाव में प्रभावुकता उत्पन्न करना साहित्य शिक्षा का दूसरा अंग है। यदि भावना ने किसी दुखी के दुख दर्द को हमारे हृदय में अविकल्प से पहुंचाया है और भावुकता ने उसका यथावत अनुभव करा के हमारे हृदय को तन्मय दुखमय बना दिया है तो साहित्य शिक्षा के सहारे हम उस हृदयगत भाव में इतनी प्रभावुकता पैदा कर सकते हैं जिससे हमारे शब्दों और अर्थों को सुनने समझने वाले भी हमारी ही तरह उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सकें। यदि सुनने वाले में वासना नामक संस्कार की एक बूंद भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय में प्रेम शोक हंसी क्रोध और उत्साह आदि की बीज बिल्कुल निर्मूल नहीं हो गए हैं, यदि उनमें बात सुनने और भाव समझने की शक्ति का एकदम विलोप नहीं हो गया है तो निसंदेह साहित्य शिक्षा में संपादित वचनावली के प्रभाव से उनका हृदय श्रृंगार करुण हास्य रौद्र और वीर आदि रसों से तन्मय हुए बिना न रहेगा। रहा प्रभाव का तात्पर्य, तारतम्य सा वक्ता और श्रोता की योग्यता का तारतम्य पर निर्भर है। पूर्वोक्त संपूर्ण अधिकार और फलों की विवेचना करना साहित्य शिक्षा का अंतिम अंग है। भावना भावुकता और प्रभावुकता को परखना, इनके गुणों को समझना जानना और दोषों को पहचानना, इनमें औचित्य संपादन करने और अनौचित्य का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्य शिक्षा की चरम सीमा है। इस प्रकार इस पूर्व संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि भावना को निर्मल और अप्रतिहत बनाना, भावुकता को परिष्कृत और परिमार्जित करना एवं प्रभावुकता को सुसंपादित करना साहित्य शिक्षा का फल है। यद्यपि अप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहाँ हमें विशेष विचार नहीं करना है, परंतु जिस कारण महात्मा भर्तृहरि ने इन दोनों को प्रकृत पद्य में एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। साहित्य शिक्षा का दूसरा फल प्रभावुकता संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जिस प्रकार साहित्य से हृदयगत मनुष्यों पुरुषों के हृदय करुण शांत और वीर आदि रसों में निमग्न होते हैं, इसी प्रकार संगीत से साहित्य से सुहृदय पुरुषों के हृदय करुण शांत और वीर आदि रसों से निमग्न होते हैं, इसी प्रकार संगीत से भी होते हैं। सच पूछिए तो संगीत में प्रभावुकता साहित्य से भी अधिक कहीं बढ़कर है। साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे भी अथवा सुहृदय मनुष्यों तक ही परिमित है, परंतु संगीत तो पशुओं पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। बैजू बावरे आदि की ही अनेक दंत कथाएं प्रसिद्ध है। किसी ने जंगली हिरणों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालाएं पहनाई, किसी ने मस्त हाथी को बस में किया, किसी ने कुल किया, किसी ने कुछ सॉरी किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ। राग रत्नाकर नामक संस्कृत की संगीत ग्रंथ में लिखा गया कि एक साल का बच्चा और एक साल का बैल जिसके गाने से यथावत प्रभावित नहीं होता वह गवैया ही नहीं। प्रभावुकता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना एक दूसरा प्रकार व्यर्थ ही रहा करता है। ये एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। भरतनाट्य में स्वर और छंदों का भी नियम बताया है। वहाँ इस बात पर अच्छा विचार किया है कि किस रस के लिए कौन छंद और कौन कौन स्वर उपयुक्त होते हैं। इस बात को सभी अलंकारिक लोग मानते हैं कि रागों से रस निष्पन्न होते हैं। रसागंगा घर से परिणतेंद्र जगन्नाथ ने भी लिखा है, रागस्यापि रसंग व्यंजकताया ध्वनिकारादि सकलालंकार इक समतत्वेन इत्यादि। यदि करुण रस के काव्य को उसी रागिनी के स्वरों में पढ़ा या गाया जाए तो करुण रस को अभिव्यक्त करती है तो सोने से सुगंध हो जाए। यदि करुणा रस से काव्य को उसी रागिनी के स्वरों में पढ़ा गया हो जो करुण रस को अभिव्यक्त करती है जो सोने में सुगंध हो जाए सॉरी तो सोने में सुगंध हो जाए। एक ही रस के अभिव्यंजक काव्य और राग के मिलने से उनमें कितनी प्रभावकता आ सकती है यह बात सहज ही समझी जा सकती है।